ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी में करीब 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही वर्चुअल माध्यम से अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें आगरा हवाई अड्डे पर करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए और बागडोगरा हवाई अड्डे पर करीब 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। श्री मोदी 220 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए भवन टर्मिनलों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन सृजित करना है जो देश के विकास की प्रेरक शक्ति बन सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान नए शिक्षण और अनुभवों से प्राप्त शक्ति से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता होगी। दिल्ली हाफ मैराथन आज सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई। इसमें करीब 35,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये मैराथन भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग और संसद मार्ग होते हुए स्टेडियम परिसर के बाहर संपन्न होगी। मैराथन के मद्देनजर दक्षिण और मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंच गई हैं। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के एक वर्ष बाद हुई है। सप्ताह भर की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। आज अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस है। पहली बार यह दिवस 20 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। यह दिन विमानन उद्योग से जुड़े उन सभी कर्मियों के लिए समर्पित है जो हवाई यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना सुनिश्चित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम शामिल है। वे धनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने जामताड़ा सीट पर सीता सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोडा और चाईबासा सीट पर गीता बालमुचु तथा रांची सीट पर सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच भी सीटों का बंटवारा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में बताया कि 11 सीट राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ML को दी गई है। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सीटों पर बंटवारा शीघ्र कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की सूची को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की एक विस्तृत रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता के प्रसार, हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक महिलाओं के जबरन और धर्मांतरण, अपहरण और धर्मांतरण, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र समिति ने शिया मुस्लिमों, ईसाइयों, अहमदियों, हिन्दुओं और सिखों पर बढ़ते हमलों और धमकियों से निपटने में पाकिस्तान सरकार की अक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। बेंगलुरु में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले मैच के चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 462 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 356 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने 106 रन की बढ़त हासिल की है। भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए थे। उधर मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में भारत ने जापान को 4-2 से हरा दिया है। वहीं दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।